ओम शांति।
डबल डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर निरंजना दीदी आप मेडिकल डॉक्टर हैं और बाबा के यज्ञ की बचपन से ही सेवा कर रहे हैं। अपने सबसे पहली खूबी इनकी ये कि आप कॉलेज टाइम से ही ये ड्रेस पहन लिया। लौकिक में जब मेडिकल कॉलेज में जाते थे तब से ही ये ड्रेस पहना हुआ है। एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में आपने कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में बड़ोड़ा में सेवाएं दी, उसके बाद यहीं से यज्ञ से दादियों के कहने से आपने फिलीपींस में जाकर के भी एज अ सेंटर कोऑर्डिनेटर सेवाएं दी। देश विदेश में आप सेवाएं देते रहते हैं और बड़ोड़ा अलकापुरी सब जोन में 40 सेंटर्स हैं, उसकी आप देखरेख करते हैं, सब जोन इंचार्ज हैं और अपनी मेडिकल विंग जो है उसके जॉइंट नेशनल सेक्रेटरी हैं। आपकी विशेषता है कि आपको योग में बहुत रुचि है, योग का चार्ट बहुत अच्छा है, बिजी होते हुए भी बहुत इजी नेचर, जिसके लिए कह सकते हैं कि जिनके विचारों में महानता, चेहरे पर मधुरता वाणी में है, तो उनको अभी हम रूबरू सुनेंगे। डॉक्टर निरंजना बेन,
अच्छा अपना टॉपिक है वो भी बड़ा सहज है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा ने आकर के हमें शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मण बनने में किसी को मेहनत नहीं लगती है, किसी को मेहनत लगी है, मुश्किल लगा नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा ने बनाया, बाबा ने कहा मैं आया हूं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाने। जो बात दुनिया वालों को बहुत डिफिकल्ट इम्पॉसिबल लगती है, वो मैंने देखा है कि जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो बड़े सहज रूप से पवित्रता को धारण कर लेते हैं, बड़े सहज रूप से। खान पान की धारणा लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, परंतु बाबा के बच्चे जो बनते हैं वो तो बस 7 दिन का कोर्स किया, 10 दिन क्लास में आए, सब धारणा। घर वालों को जो करना है सो करेंगे, परंतु जो आत्मा बाबा के बनती है वो एकदम बेसिक जो हमारी धारणाएं हैं वो आराम से कर लेती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कराया है, बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट जो है फरिश्ता सो देवता, तो अपने आप बन जाएंगे। जो फरिश्ते बने हैं वो तो देवता बन जाएंगे, क्योंकि फरिश्ता स्थिति जो है वो नॉन रिटर्नेबल है। आप एक बार अगर फरिश्ता बन गए, अगर बन गए तो उसे वापस नहीं लौटेंगे। तो अभी बाकी क्या रहा? एक ही पोर्शन बाकी रहा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो हमारा संगम युग में पुरुषार्थ केवल इतना ही है, ब्राह्मण बन गए, अब क्या बनना है? फरिश्ता बनना है। अच्छा, फरिश्ता बनने के लिए डेफिनेशन वगैरह तो आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए वो नहीं कहती हूं, परंतु सार रूप में ये कहेंगे फरिश्ता अर्थात बंधन मुक्त, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र आत्मा। अच्छा, किससे स्वतंत्र होना है? जो बाबा बार बार सुनाते हैं, बच्चे देह सहित, देह के सर्व संबंध और पदार्थ को बाबा कहते हैं भूलो। बाबा तो एक शब्द में बोल देते हैं भूलो, परंतु भूलना इतना आसान नहीं है, है ना? भूलना उसका अर्थ क्या है? खाली याददाश्त से भूलना नहीं, परंतु हमारे जो संस्कार बने हुए हैं, कॉन्शियसनेस बनी हुई है, हमारी जो कॉन्शियसनेस बनी हुई है, बॉडी कॉन्शियसनेस, जन्मों जन्म से, जन्मों जन्म की बात छोड़ो तो इस जन्म में आप देखो, है ना, बच्चा एकदम छोटा होता है, 2 मास का बच्चा होगा तब से उसका ध्यान हम खींचते हैं, देखो मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, है ना? मदर बोलेगी मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? मदर, फादर, कौन? देखो देखो देखो, तो हमारा ध्यान कहाँ? बस वहां से देह भान शुरू। जरा बड़ा होगा, तुम लड़की है या लड़का? ए तू लड़की है, ये लड़के का काम है, ये लड़के का काम है, क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस बनती जाती। जन्म जन्मों जन्म की तो थी ही, पर जो बीच में थोड़ा टाइम मिला हमें एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लिया हमने, तो बीच में थोड़ा टाइम है ना, आत्मा विदाउट बॉडी, बिना शरीर के थोड़ा टाइम रहती है, पर फिर दोबारा वही की वही बात, देह भान वाली बात। तो इस जन्म में हमने बचपन से फिर हमें सिखाया कि तुम लड़की हो या तुम लड़का हो, फिर बड़े हुए तो तुमने ये पढ़ाई किया, तुम डॉक्टर हो, समाज संसार में जो रहते हैं तो कहेंगे ये पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, मदर है, फादर है। तो ये रिलेशन से आत्मा के ऊपर बॉडी कॉन्शियसनेस की परत चढ़ती है। उसकी विधि क्या है परत की? विचार, विचार है ना। जितनी बार हम वो विचार करते हैं, भी कोई समझता है कि मैं अभी, उसके बाद तो बहुत कॉन्शियसनेस आती है, परंतु मैं लड़की हूं तो हमारा देह भान ही आता है ना। एक बार विचार किया, दूसरी बार उस अनुसार ही हम सब ड्रेसअप होंगे, उस अनुसार ही सब डेकोरेशन, मतलब क्या कहते हैं, श्रृंगार करेंगे उस अनुसार ही। तो जब जब आपने जो किया वो हमारी कॉन्शियसनेस को पक्का करता जाता है। ये ऐसे हुआ, ऐसा समझ कहते हैं, जैसे कि समझो एक लोहे का गोला है, उसको आग में डालते हैं तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, आग का गोला हो जाएगा, है ना। इसमें प्रोसेस क्या हुई कि भाई आग ने अपनी क्वालिटी, अपना स्वभाव गोले को दिया और गोले ने अपना आकार, फिगर आग को दिया, इसलिए वो आग का गोला बन गया। उसी प्रकार हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों बढ़ गई है, क्योंकि इस शरीर में आत्मा है, तो आत्मा इतनी चैतन्य है, इतनी चैतन्य है कि उसने शरीर को अपनी चैतन्यता दे दी। शरीर तो जड़ है बाकी, है ना, शरीर तो क्या कहते हैं हम, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का पुतला, पर मिट्टी का है क्या, बेसिकली मिट्टी का है, पर आत्मा अंदर में आई है चैतन्य, इसलिए हम इतने चैतन्य है। आप देखो हाथ ऐसा करने में मेरे को तकलीफ होती है क्या, देखने में तकलीफ होती है क्या, नहीं, चलने हम इतना बोलते हैं, इतना एक्सप्रेशन करते हैं, आप देखो कितना चैतन्य है। तो हम चैतन्य बन गए शरीर सहित, क्या हुआ, हम चैतन्य हैं, परंतु हम क्या समझते हैं, फीलिंग में क्या है, हम शरीर सहित मैं हूं, मैं तो कहने में कितना अच्छा लगता है ना, और मैं आपने कहा समझो, तो मैं के साथ क्या हो जाता है, शरीर, शरीर के साथ हम मैंपन को महसूस करते हैं। तो आत्मा ने अपना स्वभाव शरीर को दे दिया और शरीर ने अपनी जड़ता का स्वभाव आत्मा को दे दिया, इसलिए हम जब कभी भी सोचते हैं स्वयं के बारे में तो यूजुअली हम बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ ही सोचते हैं, है ना। बाबा बार बार कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठो, तो आत्मा समझने का अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, इस शरीर में मैं हूं पर मैं हूं पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा हूं, ऐसा अनुभव है, जिसको ऐसा अनुभव है हाथ ऊपर करें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसके लिए मैं ऐसा समझती हूं, मेरे हिसाब से ऐसा अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ क्या है कि जितनी बार हमने देह के बारे में विचार किया है उतनी बार आत्मा के बारे में विचार करना पड़ेगा, समझा? क्योंकि सारा दिन हमारा जो भी रूटीन चलती है वो देह के रेफरेंस में, देह के संबंध में चलते हैं ना। हम उठे तो ब्रश किया, ये किया, किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए सब कुछ। खाना खाया मतलब पेट में भूख लगी, वो भूख किसको लगी? फील आत्मा ने किया, पर है तो शरीर के रेफरेंस में ना। फिर जो भी किया, भोजन बनाया, आए गए, उठे बैठे, बात किया, जो भी किया वो सब क्या है? शरीर के संबंध में करते। सोचती आत्मा है, परंतु क्योंकि देह के बारे में सोचती है इसलिए देह का भान, कर्मेंद्रियों का भान वो सतत रहता है, कांस्टेंट रहता है हमारे अंदर। तो इसलिए बाबा जब हम कहते देह को भूलो, बाबा कहते देह और देह के धर्मों को, देह के धर्म को भूलो। तो देह का धर्म क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो अलग है, वो नहीं, पर देह के जो धर्म है, अभी हम तो एकदम बाबा ने सहज राजयोगी बना दिया है, इसलिए हम देह के धर्मों के ऊपर डिपेंडेंट है। देह का धर्म है भूख लगना, प्यास लगना, गर्मी लगना, ठंडी लगना, थकावट लगना, ये सब किसके धर्म है? देह के धर्म। तो बाबा कहते हैं छोड़ो नहीं कहा, क्या कहा? भूलो। भूलो का अर्थ ये है, भूलना क्यों है? भूलना है तपस्या के लिए, भूलना है योग के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। प्यास लगी है तो लगी है, भूख लगी है तो लगी है। हमें भूख लगी मीन्स खाना खाना ही पड़ेगा, प्यास लगी मीन्स पानी पीना ही पड़ेगा, ये डिपेंडेंसी है। मैं देखती हूँ कई बार कि बाबा मिलन में आते हैं लोग, भाई बहन अपने बाबा मिलन में, बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो ऐसी तैयारी करते हैं जैसे कि कहाँ बहुत दूर पार जाना हो। थैला बनाएंगे, थैले में पानी का बोतल डालेंगे, नाश्ता, अरे दो तीन घंटे में तुमको नाश्ता भी चाहिए, पानी भी चाहिए, क्या चाहिए? जबकि भगवान सामने बैठा है। देखो भगवान सामने में पानी पी रहे हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं पढ़ाई पढ़ने, स्कूल में पानी पी सकते हैं? द इंसल्ट ऑफ द टीचर, पी सकते हैं? प्यार से पे फिर खाना खाएंगे। अरे तुम सुनो ना, सुनेंगे क्या? तुम्हारा ध्यान खाने में है, तुम्हारा ध्यान पीने में है। तीन घंटा भी देह के भान से हम देह भान को भूल नहीं सकते। और मेरे समझ तो ऐसा तीन घंटे में कोई प्यास नहीं लग जाएगी, लगेगी नहीं? लगेगी, चार पांच घंटा तो आराम से व्यक्ति बैठ सकता है, इतने भूख लग जाएगी। तुमने दोपहर में तो खाना खाया होगा, खाना है तो फिर बाबा से मिलने के पहले खा के जाओ चलो, पर वहां भी बैठ के खाना। तो ये देह के धर्म जो है, देह के धर्म को भूलना सीखना है, ट्राई करना है ना, ट्राई करना है। मन इतना चंचल और विचित्र है कि जान बूझ के आप योग में नक्की कर, मुझे एक घंटा बैठना है, अगर अभ्यास नहीं है तो बैठ दस मिनट हुई लाओ पानी पी के आती हूँ, ऐसा लगेगा मन में, है ना? आप उठेंगे पानी पीने, भूख जैसा लग रहा है, चलो थोड़ा खाना ही खा लेते हैं। तो ये चंचलता आने का कारण क्या? देहभान, देहभान चंचलता लाती है। तो इसलिए बाबा का भूलो, इसको भूलना पड़ेगा, है ना, अभ्यास करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। ये काम सारा मन का है, देह नहीं इतना खींचता है, पर मन देह में पिरोया हुआ है, देह में व्यस्त है, इसलिए वो हमें उस ओर ले जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो। हम सहज राजयोगी हैं वो तो है, बाबा ने उपवास करने का नहीं कहा है, है ना, प्यासे रहने का नहीं, निर्जला उपवास, भक्ति मार्ग में लोग निर्जला उपवास करते हैं। भक्ति है पर वो भक्ति भी मन को शक्तिशाली जरूर बनाती है। तो मन मन से विचारों से जब हमें बाबा के साथ योग लगाना है तो मन शक्तिशाली चाहिए। छोटे बच्चों जैसा चंचल मन योगी नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं। जिसमें स्थिरता ही नहीं है, जो बैठ ही नहीं सकता बंदा, दो तीन घंटा भी नहीं बैठ सकता, वो कौन सा योग लगाएगा? कईयों ने मुझे कहा कि यहाँ क्लास चल रही है, योग लगाओ और दो तीन घंटा योग में बिठाओ। मैंने कोई योग नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। इतना ध्यान से गहराई से योग लगाए और योग का चिंतन करे बहुत कम लोग। बाकी तो यहाँ वहां देखने में, बातें करने में टाइम उनका लगा देंगे, है ना। तो कहने का भाव क्या है कि सबसे पहली बात बाबा ने बताई, देह को भूलो। अच्छा, दूसरी बात, देह के संबंध को भूलो। संबंध को छोड़ना नहीं है परंतु भूलना है। भूलने का अर्थ यह है कि अपने आप को, स्वयं को उन संबंधों से, संबंधों की जो भी प्लस माइनस इफेक्ट आती है उसके इफेक्ट से अपने आप को मुक्त बनाते जाओ। और वो मुक्त बनाने के लिए सबसे पहली बात जो बाबा ने कही है कि ममत्व का त्याग। ममत्व अर्थात मेरापन। मेरापन और मेरापन के बाद क्या आता है? अधिकारीपन। पहले आता है मेरा और फिर मेरा ही। समझा? ये जब आता है तो फिर उसकी हर एक्टिविटी का हमारे पर इफेक्ट होता है। हमारी अपनी एक्टिविटी का तो होता है, पर जितना जितना हमारे संबंधों में ममत्व है ना, उतना उतना हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट आते हैं। तो घर गृहस्थ में रहते हुए आज आप देखो, कई बार बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवार है, तो भी उनके घर में शांति नहीं होती। नहीं होती क्यों? ममत्व, अपने प्रति अहम भाव, अहंकार का भाव कि मेरा कहना ही सुनना चाहिए, मैं जो कहूं वही होना चाहिए। चाहे वो घर में बच्चे बहू है या छोटे बच्चे हैं, आज पेरेंट्स का इतना ज्यादा ममत्व बढ़ गया है बच्चों के प्रति भी, वो समझते हम जो चाहे वही कैरियर बच्चों को बनानी चाहिए, हम जो चाहते वही लाइन बच्चों को लेनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है जो उसके कारण बच्चों को भी टेंशन में लाते हैं और पेरेंट्स अपने आप भी टेंशन में लाते हैं। पहले से इमेजिन करके बैठ जाते हैं, मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनना चाहिए, इंजीनियर ही बनना चाहिए, CACS पढ़ना चाहिए पहले से। और इतना ज्यादा होता है कि उसके कारण उनका मन तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है। कई भाई बहन ऐसे आते पूछने के लिए, क्या करे। तो करना सब कुछ है परंतु ममत्व का त्याग करना है। और ममत्व का त्याग करने के लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि हर आत्मा इस बेहद के ड्रामा का एक्टर है ना। सभी आत्माएं हिसाब किताब अनुसार सबके परिवार, पारिवारिक संगठन बने हैं, पर है बेसिकली वो आत्मा हमारे साथ के हिसाब किताब के अनुसार हमारे साथ आई है। तो मन के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग रखनी है, आत्मा है, सभी आत्मा है। एक बात जब आत्मा समझा तो उनकी फ्री विल को हमें एक्सेप्ट करना है कि भी वो आत्मा है तो उनकी भी अपनी उनकी भी इच्छा है। मुझे याद है एक अनुभव की बात सुनाती हूँ कि शुरू शुरू में हम जब ज्ञान में आए तो मैं और मेरी फ्रेंड दो एक साथ ज्ञान में आए थे, पर मेरी जो फ्रेंड आई थी उनके पेरेंट्स ने बोला कि अगर तुम ब्रह्मा कुमारी बनी तो हम मर जाएंगे, तो बहुत डर गई और फिर नहीं बनी वो। मैंने अपने मन में सोचा कि अगर यही बात मेरे पेरेंट्स कहते तो मैं क्या करती। इट वॉज वेरी क्लियर कि तब भी हम ब्रह्मा कुमारी बनती, क्योंकि उस समय भी मुझे कॉन्शियसनेस था कि मेरा तो एक ही जन्म है और यही जन्म है, और मेरे जन्म के पर मेरा अधिकार है कि नहीं है। मेरी इस लाइफ पर किसका अधिकार है, सबसे ज्यादा अधिकार किसका है, मेरा अपना है। पेरेंट्स अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूं। ये तो थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, तो कोई बाधा कभी आई नहीं बीके बनने में। मे बी दिस इज द रीजन कि अगर होता तो भी हम यही डिसाइड करते थे। तो कहने का भाव क्या है कि गृहस्थ में रहना है, सेवा करना है, प्यार से करना है, परंतु अपने आप को फ्री रखना सीखना है। इसलिए बाबा के देह के संबंधों को भूलो। वो नहीं भूलेंगे, हमें भूलना है। इसलिए हमें अपने मन को ऐसा बनाना है, हिसाब किताब चुकतु करने की जो विधि है। हिसाब किताब में क्या होता है, दो बातें, लेना और देना, है ना, लेना और देना। तो चुकतु करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो देना है उसको दे के खत्म करो, और लेना है उसको क्या करेंगे, सामने वाला नहीं देगा तो क्या करेंगे, है ना। दो बातें होती है, मुझे लेना होगा किसी से तो भी हिसाब तो बना हुआ है। तो क्या करते हैं व्यापारी लोग, क्या करते हैं, उसको खत्म करते, ओके नहीं माफ कर देते, चलो नहीं छोड़ा, मन से छोड़ा, देना था उसको दे दिया और जिससे लेना था उसको छोड़ दिया। तो हिसाब किताब चुक दो। तो उसी प्रकार संबंधों में देना 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 और देना। हमारे प्रति जो एक्सपेक्टेशन लोगों को है, हमारे परिवार को, अड़ोस को, पड़ोस को, फ्रेंड्स को, उसको देके खत्म करना है मर्यादा पूर्वक। उसमें भी क्या आता है, सबको देना है देना है देना है, परंतु मर्यादा पूर्वक। अगर नहीं मर्यादा पूर्वक किया तो क्या होगा, जैसे रावण के लिए, सीता के लिए कहते हैं, है ना, कि भाई उसने तो कोई भूल नहीं किया, सामने साधु था, परंतु क्या किया, लक्ष्मण रेखा पार करके किया, वहां गलती किया, देने में हर्जा नहीं था, परंतु क्या, लक्ष्मण रेखा पार किया। तो हमें देख करके हिसाब किताब चुकतु करना है विथ श्रीमत, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार, और नो एक्सपेक्टेशन, किसी से लेना नहीं हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचिए, आप ये मन में सोच के देखो कि अगर मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए तो कोई मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, किसी ने स्माइल नहीं दिया, ओके, स्माइल देना नहीं देना वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है भाई, मुझे देख के उसको हंसना ही चाहिए, किसने कहा, जरूरत नहीं है, उनकी अपनी फ्री विल है, उनको नहीं इच्छा है हंसने की तो नहीं ना हंसे, नहीं हंसे भले कोई बात नहीं। किसी ने मुझे सहयोग नहीं दिया तो ओके, है ना, हमें सहयोग देना है नहीं देना मेरे हाथ में। इसकी भी हंसी की बात सुनाऊं, कॉलेज लाइफ की ऐसी कॉन्शियसनेस थी पहले कॉलेज लाइफ में भी कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एकदम स्कूल लाइफ में एक टीचर ने बोला था कि तेरे को टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्योंकि हम बहुत छोटी थी, तो एक फ्रेंड के पास जाके उसको साथी बना के फिर हम जाते थे। तो टीचर ने बोला तुम देरी से क्यों आई, मैंने बोला उसको देरी हो गई, किसने कहा उसके घर जाने का, डायरेक्ट आने का, कभी टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है, वो मन में एकदम जच गया। तो जब कॉलेज में थी तो भी हमें कहा कोई काम के लिए जाना होगा तो जहां मैं अकेली जा सकती हूँ वहां और फ्रेंड क्यों चाहिए, पर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते, बोलेंगे कि हम आपके साथ चले, मैंने कहा जरूरत नहीं है वैसे मुझे, मैं तो अकेली जाके आती, दो का टाइम वेस्ट क्यों करने का। बोला नहीं नहीं हम फ्री आएंगे, आपकी मर्जी की बात है, पर जब आप कहेंगे मेरे साथ चलो तो मैं नहीं आऊंगी। माइंड वेल, आपको मेरे साथ आना है तो आ सकते हैं, पर जब आप कल कहोगे कि मैं कल आई थी आप मेरे साथ चलो तो मैं कभी नहीं आने वाली हूं। माइंड वेल, तो हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, कैसा भी व्यवहार किसी का है। जैसे हम थक के घर गए, किसी ने पानी का ग्लास नहीं दिया तो हमारा मूड क्या हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। इतना थक के आए, इतना काम करके आए और घर वालों को बिल्कुल मेरी वैल्यू ही नहीं है, नहीं, नो एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आप घर गए खाना तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसा करके मन को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा है उतना, जैसे हम कहते हैं हमेशा कि भाई आपकी स्थिति की स्विच आपने औरों को दे रखी है, ये प्रैक्टिकल में हम कर सकते हैं, है ना, कि एक्सपेक्टेशन, जहां एक्सपेक्टेशन आए अपने आप को जागृत करो, नहीं, नो एक्सपेक्टेशन। कोई मुझे साथ दे, कोई मुझे अच्छी तरह से प्यार से बुलाए, है ना, नहीं, कोई कैसा भी बुलाए, हमारा पुरुषार्थ जो है, हमें जो करना है वो तो अवश्य करना ही है। अब तीसरी बात आती है देह के पदार्थ, पदार्थ वस्तु, आजकल वस्तु का इतना ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है, विस्तार बहुत बड़ा है ना, जो कहते हैं विषय सागर, ये दुनिया क्या बन गई है, विषय सागर, वंडरफुल है ना। एक एक सब्जेक्ट की दुनिया अपनी है, कपड़ा तो कपड़ों की दुनिया है, घर सजाने की बात तो उसकी दुनिया अपनी, कितनी ज्यादा जबरदस्त है, जबरदस्त। और मानव स्वभाव फिर ऐसा बन गया, वंडरफुल। आजकल एक शब्द यूज करते हैं लोग, शॉपिंग। शॉपिंग क्या होता है, पहले क्या होता था, कुछ वस्तु घर में कम हो गई तो भाई लेने जाएंगे, आज ये वस्तु कम हो गई बाहर जा घर बाजार में जाके लेके आते हैं, पर घर में कोई वस्तु कम ही नहीं हुई तो क्या करेंगे, फिर बाहर जाने का एक बहाना तो चाहिए, तो क्या शब्द आ गया अभी, शॉपिंग। कलयुग में मन को भटका देने का एक रास्ता, आप देखो एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम एक है। और बाबा क्या कहते हैं, देह के पदार्थों से अपने मन को फ्री करो, फ्री करो। और यूज तो करना है सब कुछ, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना है, हम खाते तो हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, आते जाते, भाई अच्छी गाड़ी मिल गई तो अच्छी गाड़ी में ही चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं जाते हैं, है ना, जाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जिस घड़ी वो नहीं है उस घड़ी हमारी एग्जाम है। बंधन वहां बनता है, मन का बंधन वहां बनता है, अभ्यास नहीं किया तो युद्ध यहां पर है, ये जो गीता में वर्णित युद्ध है वो कहां पर है, यहां। बाबा कभी कभी मूली में बड़ी मजे की बात सुनाते हैं, गुलाब जामुन, है ना, फ्रिज में गुलाब जामुन रखा है, देख के खाने की दिल हो गई, मन को इच्छा हो गई, खाएं, पर बुद्धि के दिन ऐसे तो नहीं खाया जाता, है ना, ऐसे नहीं खाया जाता, सबको साथ मिलके खाना है, अकेले में खा जाऊं तो अच्छा नहीं है बुद्धि, पर मन बार बार क्या कहता है, खा जाऊं, खा जाऊं, खा जाऊं, क्योंकि खाने की जो इच्छा है उतनी बलवान होती है तो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं सकता, ये युद्ध है। और युद्ध में हमें क्या करना है, हार खा लेनी है कि विजय पाना है, तो उस समय हमें विल पावर को शक्तिशाली बनाना होगा, नहीं, इच्छा तो हुई परंतु नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है और जो करना चाहिए वो करना है ना, इसको ही विल पावर कहते हैं। ये सब बातें करना सहज है,
परंतु प्रैक्टिकल करने में
मन की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। एक एग्जांपल सुनाती हूँ, हंसी का है। वास्तव में एक बहन, ब्रह्मा मतलब बीके बहन, परिवार वाली माता एक बार मेरे पास आई, कहती है कि बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, जो एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जाती है। कहती पहले बीमार हुई, हॉस्पिटलाइज हुई, फिर वो खत्म हुआ तो फ्रैक्चर मुझे हुआ, उसका बहुत टाइम बीत गया, घर में बीमार, कहते चलता ही रहता है, ऐसा क्यों? मुझे पूछा ऐसा क्यों, तो मैं कुछ जवाब दूं सोच के। उसके पहले वो कहते हैं उसका कारण आपको पता है बहन? मैंने बोला आपको पता है तो आप ही बता दीजिए, है ना। तो कहती है कि इसका कारण क्या है कि मेरी सास है। अच्छा, मैंने कहा आपके सास रहती है कहाँ है? वो तो मर चुकी है। अच्छा, तो बेचारी मरी हुई आपको कैसे परेशान करेगी? मैंने कहा वो मर चुकी, मरने के बाद क्या कर सकती है, कुछ नहीं करेगी। बोला नहीं, इसका कारण ये है कि वो जब मरने वाली थी तो उसकी अंतिम घड़ी में केवल मैं ही उसके पास थी। अच्छा, और मरने के समय उसने मुझे 2 सोने की, और बोला था कि एक तू लेना और एक मेरी बेटी को देना। ओके, फिर कहती है कि पर मैंने बेटी को नहीं दिया है, मेरी ननद को नहीं दिया, दोनों मैंने ही रख लिया। तो मैंने कहा सिंपल बात, सॉल्यूशन दे दो भाई, आज भी दे दो, बस वहां परीक्षा, वहां युद्ध। अब देखो, क्योंकि वो तो 2 चूड़ी जब उसको दी, वो किसी को नहीं पता है, केवल उनको पता है, तो मन चूड़ी को छोड़ने को नहीं चाहता। क्योंकि मेरी सास रोज सपने में आके बोलती है तुमने अभी तक नहीं दिया, तुमने अभी तक। अब देखो, 1-2 साल से परेशान हो रही है, सहन कर रही है, पर दिल सोने की चूड़ी को छोड़ना नहीं चाह। दिस इज फैक्ट, मैं आपको बताऊं, ये सच्ची बात है। तो उसके लिए हमें अपने मन को बनाना पड़ेगा। वो जो ममत्व है, वो जो वस्तु के प्रति का हमारा अटैचमेंट है, वो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को देखना है, और कुछ नहीं, हमारे ज्ञान का सार यही है। एक लाइन में जो बाबा हमें कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंध और पदार्थों का त्याग कहते हैं, पर भूलना कहते हैं, है ना। त्याग शब्द थोड़ा डिफिकल्ट है, त्याग जो कर सकता है वो तो बहुत अच्छा, परंतु नहीं तो कम से कम भूलने से शुरुआत तो जरूर करनी है, उसकी इफेक्ट हमारे पर नहीं आनी चाहिए। अगर ये हम कर सके तो हम धीरे धीरे अपने आप को फ्री कर सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं मुक्ति। हम अपने आप को फ्री करें, कब तक हम डिस्टर्ब होते रहेंगे? फ्री होने का अर्थ क्या है? कि हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। कोई बीमार हुआ, कई लोग अपने परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो भी परेशान हो जाते हैं। नहीं, सेवा करनी है, परेशान नहीं होना है। अपने ज्ञानी परिवार की बात है, अज्ञानी तो होते, पर ज्ञानी भी अगर किसी के घर में लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाता है, एक तरफ से फिर प्रेम भाव कम हो जाता है, सेवा भाव कम हो जाता है। नहीं, किसी ने, एक ने पूछा था, एक भाई ही आया, उसने पूछा कि मेरा फादर है, वो भाई खुद बेचारा 65 जितना था, तो उसका फादर तो 85-90 का था, तो कहते हैं मेरा फादर बहुत समय से बीमार है। अब डॉक्टर्स ने भी कहा कि अभी ये तो जीने वाले नहीं है, पर जी रहे। तो कहते हैं डॉक्टर्स ने भी कहा कि तुम सब दवाइयां बंद कर दो, तो फिर ऑटोमेटिकल थोड़ा जल्दी ही चला जाएगा। तो पूछने आया, क्या करना चाहिए बहन जी? मैंने कहा कभी नहीं छोड़ना, प्यार से सेवा करो, है ना। जितना प्यार से सेवा करेंगे तो बंधन टूटेगा, सेवा नहीं करने से बंधन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कह रहा, हाँ मैं भी सोच तो रहा था, पर आपने ठीक बता दिया। छोटी बहन पहले मिली उसको, तो छोटी बहन को ये एक्सप्लेन किया उसने, तो बहन ने, हाँ ठीक है, वो डॉक्टर कहता है वो राइट बात है, वो कर लो। फिर मेरे से मिला, उन्हें नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, प्यार से बहुत ज्यादा प्यार से सेवा करो, आत्मा संतुष्ट होगी और चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि छोड़ना नहीं है, करना सब कुछ है, पर हमें उसके इफेक्ट, परेशान नहीं होना है। बेचारा जो बीमार है परेशान, तो वो खुद होता है ना। हम किसी का पेन दुख तो नहीं ले सकते, हम खाली सहयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे ब्राह्मण परिवारों में आ जाता है कभी कभी, कोई पार्टनर में एक पार्टनर अगर बीमार है तो भी देखो ना कब से बीमार है, हम कितनी सेवा करें, हम तो थक गए। नहीं, तुम अच्छे हो ना, तुम सेवा करो, प्यार से सेवा करो, है ना। तो उससे हमारा बंधन कम होता है। हमारी जो यात्रा है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की, फरिश्ता तो उड़ने की बात है और बात है, लंबी बात है, परंतु सबसे पहले हमें धीरे 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 क्या करना है, अपने आप को फ्री करना है, स्वभाव को इस तरह बदलना है। जैसे कई अभी एक क्लास में सुना था, कहा था कि भाई औरों में माथा मत मारो, है ना। कोई क्या करता है, क्यों करता है, कैसे चलता है, आता है नहीं आता है, उन बातों में अपने आप को मत बिजी करो। जैसे बाबा मुरली में कभी कहते हैं, मियां दुबले क्यों, सारे गांव की चिंता। दुबला अर्थात शरीर से दुबले की बात नहीं है, परंतु मन से। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा मैं हमेशा कहती हूं कि आजकल हवा में भी नेगेटिविटी है, हवा में भी है, है ना। इसीलिए हमें कोई हमारी नेगेटिव फीलिंग को दोबारा मन में लाना नहीं है, बी केयरफुल। क्योंकि अगर आपने अपने मन में नेगेटिविटी को थोड़ा भी बढ़ाया तो बाहर तो एटमॉस्फेयर है ही, वो एकदम प्रेशर से आपके मन में आता जाएगा, और आजकल डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जरा सा भी आपको थोड़ा परेशानी हुई, आपने परेशानी का सोचा, तो डिप्रेशन आने की संभावनाएं बहुत है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। तो हमें क्या करना है, बाहर के विचार हमारे अंदर ना घुसे, इसलिए हमें क्या करना है, हमारे पॉजिटिव प्रेशर को बढ़ाना है। हमें क्या करना है, इसलिए बाबा के सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। जो बाबा ने हमें कहा है कि सिंपल स्लोगन कहा है, ना दुख दो ना दुख लो, फिर क्या कहा, सुख दो और सुख लो। ना दुख दो वो तो समझ में आता है, किसी को दुख नहीं देना है भाई, पर दूसरा सेंटेंस क्या है, ना दुख लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कहां से भी, कैसी भी सिचुएशन, कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी प्रतिकूल परिस्थिति, परंतु हमें उससे दुख नहीं लेना है, अभ्यास करना है। नहीं जरा भी दुख आ जावे, नहीं 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 नहीं, दुख लेना ही नहीं है मुझे, फील करना ही नहीं है, पेन लेना ही नहीं है। दूसरा सेंटेंस क्या है, सुख दो और सुख लो। सुख देने लेने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है ना। किसी को खुश करना, किसी को सुख देना बहुत सहज है। एक स्माइल भी किसी को सुख दे सकती है, है ना, विथ नो प्राइज। स्माइल करने में क्या चाहते हैं? पर कईयों का स्वभाव कैसा होता है, बहुत सीरियस रहने का स्वभाव, मुश्किल स्माइल करेंगे। अरे सामने मिल गया तो स्माइल कर लेने में क्या जाता है। जो हमारी दादी प्रकाशवाणी थी, आप देखो है ना, कैसा वाइब्रेंट पर्सनालिटी, कितनी वाइब्रेंट पर्सनालिटी, कितनी वाइब्रेंट थी, कितनी सहज भाव, एकदम सहज भाव। जैसे दादी जानकी भी कभी कभी कहती थी, अभी तो दादी जानकी भी ऐसे ही हो गई है, पर जब दादी प्रकाशवाणी थी तो दादी हंसते हंसते, जानकी दादी और प्रकाशवाणी दादी साथ में बैठते थे ना, तो दादी बोलती थी दादी जानकी कि प्रकाशमणि दादी आती है तो क्या हो जाता है सारे हॉल में। और आपका भी कईयों का अनुभव होगा और एक्चुअल अनुभव होगा कि दादी जैसे आएगी तो यहाँ हार्ट में खुशी हो जाती है। आपको हुआ है किसी को अनुभव ऐसा? बहुतों का अनुभव है ना, पता नहीं इतना क्या है। आप देखो तो अंदर की खुशी, प्यार इतना ज्यादा है। तो अभी हमें भी क्या करना है, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। सुख देने में कंजूसी नहीं करना। किसी को पानी का ग्लास दे दिया तुम छोटे हो गए क्या, क्या फर्क पड़ता है ना। छोटी छोटी बातों में आप किसी को सुख दे सकते हो, अपने घर में भी, घर में भी। कई लोग परिवार में, घर में भी ईगो क्लैश होती है, हम नहीं देंगे। अरे क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है, हमने दे दिया है ना। तो सुख देना सीखना है, हर एक को, हर एक को, हर एक को जो मिले उसको सुख दो, घर में भी। ऐसा नहीं कई लोग बाहर सबको सुख देने जाते हैं और घर में नहीं देंगे, नहीं, परिवार में भी, परिवार, बच्चों को भी, बच्चों को भी प्यार से पालना करो, परेशान करके नहीं। कई माँ बाप बहुत गुस्सा करते बच्चों के ऊपर, नहीं, प्यार से करो। बच्चों को भी प्यार चाहिए, उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करो, बच्चा बच्चा नहीं बोलो है ना। उनको आप प्यार से जो काम कराएंगे ना वो सब कुछ करेंगे। तो इसीलिए बच्चों के साथ भी सबको, दुनिया में सबको सुख देना सीखना है। और फिर क्या कहा, सुख लो, छोटी छोटी बातों में सुख लेना सीखो। हम क्या करते हैं, रूटीन में हमें जो कुछ मिलता है वो हम समझ लेते कि ठीक है, उसमें वो तो उसका फर्ज है ना, दे दिया ना, उसमें क्या है। नहीं, इस बात में हम इंडियंस बहुत पीछे हैं, थैंक्स कहने में है ना, बहुत पीछे हैं, वेरी नाइस कहने में बहुत पीछे हैं। आप फॉरेनर्स को देखो, आप खाना खिलाएंगे तो भाई बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बोले नहीं होगा तो भी, होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी बात है, परंतु कहेंगे, हर बात में थैंक्स कहेंगे। तो वो सुख लेने की बात है। आपके साथ कोई भी दो मिनट बात करता है, अच्छी तरह बात करता है, स्माइल करता है, तो भी सुख लेना है, सुख लेना है। घर में आप गए हैं, पानी का ग्लास आपको किसी ने दिया, तो वो सुख लेने की बात, ये ठीक, लिए पानी पीने रख दिया, अरे बाबा तुम थैंक्स तो बोलो, बोलो नहीं घर ही, घर में तो कम से कम महसूस तो करो है ना। चाय का कप आपको देती है वाइफ, तो जरा अच्छा तो महसूस करो कम से कम है ना, सुख तो लो। तो सुख लेते लेते सुख लेने का अभ्यास हो जाएगा है ना। ऑफिस में काम करते हैं भाई लोग, आपके प्यून लोग आपको कुछ मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इट्स गुड। भले वो प्यून है, उसकी ड्यूटी है, पर फिर भी हमें उसका भी क्या लेना है, सुख लेना है। तो मैं समझती हूँ कि जितना हम इन बातों को अपनी लाइफ में लाएंगे, उतना उतना हम अपने मनोस्थिति को ऊपर ले जाएंगे। 100 बात की एक बात कि हमें हमें बंधन मुक्त बनना है, ये इससे देह और देह के संबंध और देह के पदार्थों के बंधन से मुक्त बनना है। बंधन नहीं होना चाहिए, सब कुछ हम यूज करते हैं परंतु बंधन मुक्त बनना है। तो जो बंधन मुक्त बनेगा है ना, बंधन मुक्त बनने का अर्थ ही है कि जिनका इस फर्श से रिश्ता धीरे धीरे कम होता जाता है वो फरिश्ता बनता है। है ना, फरिश्ता बनने की बातें तो बहुत है, परंतु ये एक बात हम याद रखेंगे तो भी हम अपनी ऊंची स्थिति को बना सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। शाम का सेशन अपना आपको पता है डॉक्टर सतीश गुप्ता का होगा, उसका भी मन मना बहु मध्या जी वो टॉपिक है, और उसके बाद रात्रि का जो सेशन होगा वो आज अनुभव की लेन देन का टॉपिक है। तो आप में से जिनको भी अनुभव सुनाना है वो सुना सकते हैं। एक बहन बोल के गई कोई गीत गाने वाली है ना, आप में से भी किसी को अगर गीत कविता कुछ बनाना है सुनाना है तो पहले से आप लक्ष्मी बहन को या क्या नाम बोला आपका, मैं भूल गई, अनीता बहन, उनको लिखा दे तो आप कर सकते हैं, है ना, बना के लाएंगे करके लाएंगे, और अनुभव जिनको सुनाना है वो भी बताएंगे, है ना, क्या अनुभव इन तीन दिनों में यहाँ करके क्या अपलिफ्टमेंट हुआ, समझ में क्या अंतर आया, पुरुषार्थ करने का क्या आपने सोचा, क्या सोचा है ना, लेवल डिफरेंस, यहाँ के लेवल डिफरेंस हुआ, जरा सा भी हुआ तो भी इट्स नाइस, तो भी अच्छी बात है, पर हुआ क्या, हुआ आपने क्या संकल्प किया, क्या करेंगे, वो बातें आप अनुभव में सुना सकते हैं। ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद करके